أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد السلام عليكم دوستوں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام میں ہم مسلسل احکام کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ محارم یعنی محرم اور نامحرم کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی جس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ماں باپ کی طرف سے جو ہے مردوں کے لیے کون کون سی عورتیں نامحرم ہیں پھر اس کے بعد میں بیان کیا کہ عورتوں کے لیے کون کون سے مرد نامحرم ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر محارم سببی یعنی جو شادی کی وجہ سے جو لوگ محرم ہو جاتے ہیں ان کو بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کون کون سے ایسی خواتین ہیں اور عورتیں ہیں کہ جو شادی کے وجہ سے مردوں کے لیے محرم ہو جاتی ہیں یعنی جن کے محرم ہونے کے سبب جو ہے وہ شادی بنتی ہے اگر شادی نہ ہوتی تو وہ لوگ محرم نہ ہوتے لیکن اب یہاں پر جو ہمیں بیان کرنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ شادی کے ذریعے سے عورتوں پر کون کون سے مرد محرم ہو جاتے ہیں عورتوں کے لیے وہ ہمیں آپ کے سامنے یہاں بیان کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے خود شوہر ہے شادی کے ذریعے سے جیسے اس عقد ہوا تو شوہر جو ہے وہ محرم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا وہ شوہر کا بیٹا مثال کے طور پر کسی انسان نے پہلے ایک شادی کی تھی اس سے ایک بیٹا ہے اور اب اس نے دوسری شادی کی تو جو اس نے جو دوسری شادی کی ہے تو دوسری بیوی کا یہ بیٹا نہیں ہے یہ جو اس کا پہلے سے بیٹا ہے وہ اب جس سے شادی کر رہا ہے اس کا بیٹا نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس کے لیے محرم ہے اسی طریقے سے جو ہے بیٹے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوتا اور نواسا یہ بھی محرم ہو جاتے ہیں شادی کے ذریعے سے ماں کا شوہر جو ہے وہ محرم ہو جاتا ہے یہ کیسے ماں کا شوہر محرم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر خالد کے والد کا خدا نخواستہ یا انتقال ہو جاتا ہے ایک فرضی مثال لے رہے ہیں کسی کا نام یا مراد نہیں ہے خالد کے باپ کا یا انتقال ہو جاتا ہے یا جو ہے ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے خالد کی ایک بہن بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ خالد کی جو امی ہے وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے تو جو دوسرے مرد سے جو شادی کی ہے وہ جو ہے شادی کے سبب جو خالد کی لڑکی ہے اس کے لیے خالد کا شوہر محرم ہو جائے گا جبکہ یہ جو ہے خالد کی اماں جو ہیں ان جو خالد کی بہن ہے اور خود خالد تو یہ دوسرے جو شوہر جو ہے ان کی اماں کا وہ ان لوگوں کا باپ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ خالد کی بہن کے لیے وہ شخص محرم ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ اس نے ان لوگوں کی اماں سے شادی کی ہے یا اس کی شادی جو ہے وہ ان کی والدہ نے جو ہے ان سے شادی کر لی ہے گویا یہ کہ اگر جو ہے کوئی عورت دوسری شادی کر لیتی ہے چاہے وہ طلاق کے بعد کرے یا اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کرے اور پہلے شوہر سے کوئی لڑکی ہے تو پہلے شوہر سے جو لڑکی ہے وہ اس شوہر کے لیے محرم ہے اور یہ والا شوہر جو ہے اس لڑکی کے لیے محرم ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسی طریقے سے داماد بھی جو ہے عورت کے لیے محرم ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ داماد کیسے شادی کے ذریعے یہاں بات چل رہی ہے کہ جو شادی کے ذریعے سے محرم ہوتے ہیں تو شادی کے ذریعے سے جو محرم ہوتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف اپنی شادی کے ذریعے بلکہ شادی کے ذریعے چاہے وہ بیٹے کی شادی ہو بیٹی کی شادی ہو شادی کے ذریعے سے جو ہے وہ محرمیت جو حاصل ہوتی ہے اس کی گفتگو ہے یہاں پر تو اسی طریقے سے جو ہے وہ لڑکی کا شوہر یعنی اپنا داماد بھی جو ہے شادی کے ذریعے سے عورت کے لیے محرم ہو جاتا ہے یعنی کسی لڑکے کی اس کی لڑکی سے شادی ہوئی اب تک یہ لڑکا اس کے لیے محرم نہیں تھا لیکن اب جیسے اس کی لڑکی سے شادی ہوئی اس کا داماد ہو گیا اس کی لڑکی کا شوہر ہو گیا تو یہ لڑکا جو ہے لڑکی کی ماں کے لیے بھی यानी अपनी बीवी की माँ के लिए भी महरम है। ये पांच महारम थे जो हमने आपके सामने बयान किए, यानी शादी के ज़रिए औरतों के लिए कौन कौन से अफराद जो हैं वो कौन कौन से मर्द महरम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मसला जो है आपके सामने एक बयान करना है, उसके बाद जो है वो दूध पिलाने के ज़रिए जो लोग महरम हो जाते हैं उनको बयान करेंगे। मसला ये है कि जो हमने बयान किए महरम के बारे में कि कौन कौन मर्द जो हैं वो औरतों के लिए महरम हैं, चाहे वो माँ बाप की रिश्तेदारी की वजह से हो यानी नसब की वजह से, और चाहे जो है वो सबबी रिश्तेदारी की वजह से हो यानी शादी वगैरह के बाद जो लोग महरम हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ और हम आपके सामने बयान करेंगे जो दूध पिलाने के ज़रिए से महरम हो जाते हैं, उनके अलावा जितने भी मर्द हैं वो औरतों के लिए नामहरम है। अब इसमें जो है वो हुक्म शरीयत जो है हमारे लिए वो अहम है, हमें ये नहीं देखना कि हमारे यहाँ किनको महरम समझा जाता है किनको नामहरम समझा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। शरीयत क्या कहती है, शरीयत किसको नामहरम कह रही किसको महरम कह रही, ये देखना है और शरीयत के मुताबिक अमल करना है। मिसाल के तौर पर जो है वो चचा के लड़के, ताए के लड़के, खाला के लड़के, मामू के लड़के हैं, ये जो है आमतौर पर घरों में आना जाना इस तरीके से होता है, और इस तरीके से जो है वो एक दूसरे के सामने आना जाना जो है, मिसाल के तौर पर चचा के लड़के के सामने ताए की लड़कियों का आना, या दो भाई हैं उनके बच्चों का, लड़के लड़कियों का आपस में एक दूसरे से इस तरीके से मिलकर रहना, आने जाने में कोई हर्ज नहीं है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि वो पर्दे का ख्याल रखें। चचा का लड़का जो है वो नामहरम है, खाला का लड़का नामहरम है, और इसी तरीके से मामू का लड़का नामहरम है, लिहाजा लड़कियों को जो है वो पर्दा करना चाहिए, पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि हमारे माशरे में क्या राइज है, इसलिए कि कयामत के दिन जो है वो माशरा काम नहीं आने वाला है, बल्कि कयामत के दिन जो है वो नेक अमल काम आने वाला है और दीन काम आने वाला है। लिहाजा जो है वो जितने हमने बताए हैं कि माँ बाप की तरफ से शादी के ज़रिए और जो बताएंगे दूध पिलाने के ज़रिए से जो मर्द महरम हो जाते हैं औरतों के लिए, उनके अलावा जो है वो सब के सब नामहरम है। यहाँ तक कि जो है वो बहन का शोहर यानी बहनोई वो भी नामहरम है, उससे भी जो है पर्दा करना चाहिए, यानी आमतौर पर जो है वो साली और बहनोई का रिश्ता जो है माशरे में देखा जाता है कि पर्दे की रियायत नहीं की जाती, जबकि पर्दे की रियायत, पर्दे का ख्याल करना चाहिए, एक चीज़। दूसरे जो है वो इसी तरीके से शोहर का भाई यानी देवर और जेठ भी महरम नहीं है, नामहरम है, उनसे भी पर्दा करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर जो है वो एक चीज़ ये है कि महारिम के सिलसिले में हमने आपसे बयान किया था पहले भी कि महरम जो है आपस में एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं, यानी जो लोग आपस में एक दूसरे के महरम हैं वो शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नामहरम हैं, नामहरम वो लोग हैं कि जो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, यानी अगर एक लड़का और एक लड़की आपस में नामहरम है तो उनकी शादी हो सकती है, लेकिन अगर एक लड़का है और एक इधर लड़की है दोनों आपस में महरम है तो शादी नहीं हो सकती। लेकिन एक इस्तिसनाई इख्तसासी और खसूसी मसला ये है कि बहनोई और साली आपस में नामहरम है, महरम नहीं है, नामहरम है, लेकिन फिर भी जो है वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि दो बहनों को एक साथ ज़ौजियत में नहीं रखा जा सकता, दो बहनें एक साथ एक शौहर की बीवी नहीं बन सकती हैं, एक इंसान की बीवी नहीं बन सकती हैं। हाँ, अगर खुदा न खास्ता जो है वो बाद में कोई मसला पेश आ जाता है, मिसाल के तौर पर इंसान ने शादी की किसी से उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो बाद में वो अपनी साली से शादी कर सकता है, लेकिन जो है ज़िंदगी में दो बहनों को जो है एक साथ नहीं रखा जा सकता है। इसलिए ये एक खसूसी और अलग मसला है कि ये लोग बावजूद इसके कि नामहरम हैं, यानी साले और साली और बहनोई जो है वो आपस में नामहरम लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो शेर दूध पिलाने के अहकाम हम आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले क्यों? इसलिए कि दूध पिलाने के ज़रिए से भी, यानी अगर कोई औरत किसी दूसरी के बच्चे को, लड़की को या लड़के को दूध पिला देती है, तो तो ये औरत जो है उसकी माँ हो जाती है, जिसने दूध पिलाया है ये दूध पिलाने वाली माँ हो जाती है, और इसके कुछ रिश्तेदार जो है उस लड़की और उस लड़के के नाम महरम हो जाते हैं जिसको दूध पिलाया है। लेकिन दूध पिलाना जो है वो ऐसे नहीं है कि किसी ने जो है वो किसी को उठाया और एक बार जो है वो थोड़ा सा दूध पिला दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि बच्चा जो है वो जिंदा औरत का दूध पिए, यानी ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो किसी औरत का दूध पिए और बाद में मालूम हो कि वो औरत तो मर चुकी थी जिसका दूध पिया था, या जो है वो मुर्दा औरत का दूध पिला दिया जाए किसी को। इससे जो है वो ना वो मुर्दा औरत इसकी माँ बनेगी और ना ही उस मुर्दा औरत के रिश्तेदार इसके लिए महरम होंगे। दूसरी शर्त यह है कि औरत के सीने में जो दूध है, जो दूध बच्चे ने पिया है, वो दूध हलाल होना चाहिए, यानी हलाल से होना चाहिए। यानी क्या मतलब, यानी ये कि वो दूध उसके सीने में इस तरीके से हो कि उसकी शादी हुई हो और अपने शोहर के साथ रहती हो और बच्चे वगैरह उसके शोहर से मौजूद हों। अगर जो है वो खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि कोई औरत जो है वो किसी के साथ जो है वो बदफेली अंजाम दे देती है, जिना कर लेती है, उसके बाद जो सीनों में दूध आता है अगर उसको जो है कोई बच्चा दूध पी लेता है, तो फिर जो है ये दूध पीना जो जिना के ज़रिए से, हराम काम के ज़रिए से औरत के सीनों में है, इस दूध पीने के ज़रिए से बच्चा जो है वो उसके और उसके रिश्तेदारों के लिए महरम नहीं होता है। तीसरी शर्त यह है कि बच्चा जो है वो मुंह को सीने से लगाकर दूध पिए, ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो दूध पीना नहीं जानता है या दूध नहीं पीता है या सीने को मुंह नहीं लगाता है और दूध जो है उसको चम्मच वगैरह के ज़रिए से दे दिया जाए या किसी और वसीले से, ये नहीं। अगर ऐसा है तो महरमियत का सबब नहीं बनता है। अलबत्ता यहाँ पर जो है बाज़ फुका कहते हैं कि नहीं, अगर बच्चा दूध खुद से सीने से मुंह लगाकर नहीं पीता है बल्कि जो है उसके मुंह में डाल दिया जाता है चम्मच या किसी भी चीज़ के ज़रिए से, तब भी बेहतर ये है कि उस औरत के जो महरम लोग हैं वो उनसे शादी ना करें, यानी वो बच्चा। इसके बाद जो है वो शर्त ये है कि बच्चे की उम्र जो है 2 साल से ज़्यादा ना हो, यानी 2 साल मुकम्मल ना हो गए हों, यानी जब बच्चा किसी औरत का दूध पी रहा है तो 2 साल से पहले पहले पी रहा हो, 2 साल के बाद ना पी रहा हो। अगर 2 साल के बाद किसी का दूध पीता है तो उसके लिए वो महरम नहीं होगा, उसके और उसके रिश्तेदारों के लिए। क्यों? इसलिए कि दूध पीने की मुद्दत जो है वो माँ का दूध पीने की मुद्दत 2 साल बताई गई है। और इसी तरीके से जो है वो एक शर्त यह है कि बच्चा दूध जो है दूध को पीने के बाद बीमारी की वजह से उल्टी ना कर दे। मिसाल के तौर पर बच्चा बीमार है और जैसे ही दूध पीता है फौरन जो है वो उल्टी कर देता है, अगर उसने दूध पिया बार बार, दूध पिया बार बार, उल्टी करता रहा, तो गोया जो है फिर महरमियत हासिल नहीं होगी, यानी ना वो औरत में उसके लिए महरम होगी और ना ही उसके महरम जो लोग हैं वो। उसके बाद जो है वो आखिरी शर्त ये है कि बच्चा जो है कम से कम 1 दिन और 1 रात, यानी 24 घंटे जो है वो दूध पिए, यानी एक औरत का। अब 24 घंटे से मुराद ये नहीं कि लगातार 24 घंटे दूध पीता रहे, बल्कि 24 घंटे में जब भी उसको भूख लगती है वो एक ही औरत का दूध पिए, और दूसरी चीज़ जो है वो पेट भर कर दूध पिए। तीसरी चीज़ ये है कि इस 24 घंटे में वो खाना ना खाए, फ़कत दूध पिए और दूध से पेट भरे, और सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि किसी दूसरी औरत का दूध भी ना पिए। मिसाल के तौर पर किसी ने जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए रख लिया है और वो जो है वो क्या कहते हैं, एक दिन के लिए किसी को रखा और कभी वो दूध पिला देती है, कभी ये दूध पिला देती है, माँ कभी माँ दूध पिला रही, कभी वो दूध पिला रही, ये नहीं, बल्कि 24 घंटे में जब भी उस बच्चे को भूख लगे वो दूध पिलाए और इस दरमियान खाना भी ना खिलाया जाए, पेट भर कर बच्चे को दूध पिलाया जाए। या जो है अगर 24 घंटे का हिसाब ना करें तो कम से कम 15 मरतबा जो है कोई औरत किसी के बच्चे को दूध पिलाए, तब जो है महरम होगी उसकी। और इस 15 मरतबा के दरमियान ना तो बच्चा जो है किसी दूसरी औरत का दूध पिए और ना ही जो है वो जो है खाना खाए, यानी कोई चीज़ और दूसरी दी जाए। या जो है अगर 15 मरतबा का भी हिसाब नहीं कर सकते तो कम से कम इतना दूध पिए कि जिससे ये कहा जाए कि हाँ इसने इस औरत का इतना दूध पिया है कि जिसके ज़रिए से इसका बच्चे का जिस्म को जो है वो दूध लगा होगा, यानी हड्डियाँ इसके ज़रिए से मजबूत हुई होंगी और गोश्त में इजाफा हुआ होगा। यानी अलबत्ता ये नहीं कि ये जो है वो एक 24 घंटे का या 15 बार दूध पी के जवान हो गया होगा, नहीं, बल्कि ये कि जिस तरीके से जितना रोज़ाना जो है वो बच्चे को लगता है, भाई रोज़ाना दूध पीता है, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा लगता है, गोश्त भी बनता है, थोड़ा थोड़ी सी जो है हड्डी भी मजबूत होती है, तो अगर ये कहा जाए कि इसने इतना दूध पिया है कि हाँ इसके गोश्त को लगा होगा और इसकी हड्डी जो है इससे मजबूत हुई होगी, तो तब भी जो है वो बच्चा उस औरत और उसके महरम रिश्तेदारों के लिए महरम हो जाता है। अब ये कि किसके लिए महरम हो जाता है, लड़की जो है अगर दूध पिए तो किन मर्दों के लिए महरम हो जाती है, या कौन से मर्द उसके लिए महरम हो जाते हैं, लड़का दूध पिए तो उसके लिए कौन सी औरतें महरम हो जाती हैं, ये इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वसलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।